हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन से बात करने के बाद आंशी अपने कमरे में आ गई थी और जोर जोर से रो रही थी। विधिक ने जो भी किया था उसके बाद से आंशी काफी डर गई थी, लेकिन फिर उसने अमन की बातों पर गौर किया तो उसका डर कुछ हद तक कम हो गया। आंशी ने अपने आंसू पोंछे और बिना किसी भाव के कहा, तुम मुझे हर बार कमज़ोर नहीं कर सकते विधिक, मैं नहीं डरती तुमसे और इस बात को मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी। ये पहला प्यार हमेशा इतनी तकलीफ क्यों देता है? हमेशा यही सोचती थी कि काश तुम अच्छे होते तो हमारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होती, पर यू नो व्हाट विधिक, तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते। आंशी उठकर बाथरूम में गई और उसने अपना मुंह धोया। वो खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। जब आंशी को थोड़ा बेहतर लगने लगा तो वो रूम से बाहर आई। आंशी ने इधर उधर देखा तो उसे अमन दिखाई नहीं दिया। फिर उसने किचन से बर्तनों की खटपट की आवाज सुनी तो वो समझ गई अमन किचन में है। मैं हर बार तुम्हें डिसअपॉइंट करती हूँ। एक तुम हो जो मुझे संभालने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, और मैं, आई एम सो सॉरी अमन, आंशी ने बड़बड़ाकर कहा। आंशी का चेहरा उतरा हुआ था। वो वहां से वापस कमरे में जाने लगी। तभी उसकी नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी जिस पर कुछ देर पहले विधिक का कॉल आया था। विधिक के कॉल के बाद आंशी ने उसे वापस बंद कर दिया था। गुस्से में आंशी ने अपना मोबाइल उठाया और वापस कमरे में आ गई। इस बार उसने रूम अंदर से बंद नहीं किया था। न जाने आंशी को क्या सूझा कि उसने अपना फ़ोन फिर से ऑन किया और विधिक को कॉल मिला लिया। विधिक उस वक्त घर जा रहा था और गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहा था। आंशी का कॉल आते देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने गाड़ी रोकी और आंशी का कॉल पिक किया। बड़ी जल्दी याद आ गई मेरी बटरफ्लाई, लगता है सच का पता चल गया, विधिक ने कॉल उठाते ही कहा। वो समझ गया था आंशी ने इतनी जल्दी कॉल क्यों किया होगा। हाँ, पता चल गया है, तुमने मेरी दादी को कुछ नहीं किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकता। वो बस एक वार्निंग थी, बाकी दादी अभी भी सेफ नहीं है बटरफ्लाई, विधिक का लहजा डरा देने वाला था। नहीं, मैं ये कभी नहीं सोचूंगी कि तुम कुछ नहीं करोगे। तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी फितरत में ही दूसरों को चोट पहुंचाना विधिक राणा। आंशी उस वक्त काफी गुस्से में बात कर रही थी। विधिक ने उसकी आवाज को महसूस करते हुए कहा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है बटरफ्लाई, तुम्हारा सोचकर ही मैंने उन्हें कुछ नहीं किया। देखो, तुमसे कितना प्यार करता हूँ कि तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, पर तुम हो कि कभी मुझे समझती ही नहीं। विधिक की बात सुनकर आंशी जोर से हंसी, फिर वो कड़वाहट के साथ बोली, तुम मुझे रोते हुए नहीं देख सकते? सीरियसली विधिक, तुम अच्छे से जानते हो मेरी हर तकलीफ और आंसू की वजह तुम हो, और तुम मुझे रोते हुए नहीं देख सकते? प्यार करता हूँ तुमसे बटरफ्लाई, तो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी तुम्हें मेरी एक्सेप्ट करनी होगी। खुशियों के साथ गम ना मिले तो खुशियों की वैल्यू कम हो जाती है। तुम्हें मेरे नेगेटिव साइड को भी एक्सेप्ट करना होगा। कर लेती अगर पहले दिन ही आकर अपने बारे में सब सच बताया होता और मेरे प्यार के खातिर सारे गलत काम छोड़कर मेरे पास आते। आई स्वेयर, मैं सब भूल जाती कि तुमने पास्ट में क्या किया था। मेरे लिए तुम्हारा आज मायने रखता। तुम्हें पूरे दिल से तुम्हें अपनाती। बोलते हुए आंशी की आंखों से आंसू बह गया। विधिक की आंशी की आवाज़ के हर एक इमोशंस को अच्छे से महसूस कर सकता था। पिछली बार जब आंशी कॉल पर रोई थी तो वो उसका डर था, लेकिन अब उसके आंसू विधिक के लिए उसके जज्बात थे। ये सुनकर विधिक कुछ पल के लिए चुप हो गया। तुम एक बार फिर से मेरे पास आओ तो सही बटरफ्लाई, आई प्रॉमिस मैं सब छोड़ दूंगा। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बस प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ बटरफ्लाई। बोलते हुए विधिक भी इमोशनल हो गया। उसकी आंखें नम हो रही थीं, जो कि बहुत कम मोमेंट पर होता था। नहीं, अब कब, बहुत देर हो गई है। मुझे तुम्हारे चेहरे में मेरा विधिक नहीं दिखाई देता, अब मुझे तुम में मेरे दोस्तों का कातिल दिखाई देता है। तुम्हारे हाथ कई मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। तुमने मेरे हर एक अपने को मुझसे दूर करने की कोशिश की है, ये मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती। विधिक, तुमने हैरी, प्रिंस और सृष्टि को मारा है। यहाँ तुम बम ब्लास्ट करने आए थे, तुम्हारी वजह से कितने मासूम लोगों की जान जाने वाली थी, और अब तुम दादी को नुकसान पहुँचाना चाहते हो, आंशी ने रोते हुए कहा। लेकिन मैंने उन्हें कुछ किया तो नहीं ना? मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। जब कोई किसी से शिद्दत से प्यार करता है तो सामने वाले को समझता है, पर तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। मैं मानता हूँ मुझसे पास्ट में गलती हुई है, पर अब सब छोड़ने के लिए तैयार होना। आ जाओ बटरफ्लाई, इससे पहले कि मेरा गुस्सा सबको तबाह करके रख दे। बोलते हुए विधिक के शब्द सख्त होने लगे। आंशी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर विधिक गुस्से में बोला, एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, जैसा कहा है वैसा करो। तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, पर आई स्वेयर बटरफ्लाई, तुम्हारे आसपास तुम्हारी दुनिया को तबाह ना कर दिया तो मेरा नाम भी विधिक राणा नहीं, और तुम अच्छे से जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे मेरी चीजें हासिल करना आता है। मैं नहीं डरती तुमसे विधिक राणा, तुम्हें जो करना है करो। आई कर्स यू विधिक, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में सब मिल जाएगा, लेकिन तुम अपनी सबसे कीमती चीज के लिए आखिरी दम तक तड़पते रहोगे। तुम्हारी आखिरी सांस तक मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और तुम, आंशी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उससे पहले विधिक गुस्से में जोर से चिल्लाया, अंश, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। विधिक आगे कुछ कहता उससे पहले कॉल कट होने की आवाज आई। उसने गुस्से में जोर से गाड़ी के स्टीयरिंग पर पंच किया। आंशी ने जो भी कहा था उससे उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। विधिक ने वापस आंशी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। आंशी विधिक के गुस्से को बढ़ा दिया था और अब वो गाड़ी लेकर जा रहा था। उसे नहीं पता था वो क्या करने वाला था, लेकिन ये तय था कि आंशी के शब्द उस पर बहुत भारी पड़ने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ जब आंशी विधिक से बात कर रही थी तो बीच में अमन आ गया। उसने आंशी के हाथ से फोन छीना और उसी वक्त से दीवार से जोर से दे मारा। एक ही झटके में आंशी का फोन टूटकर नीचे गिर गया था। अमन के ऐसा करने पर आंशी गुस्से में चिल्लाकर बोली, ये क्या किया तुमने, मेरा फोन तोड़ दिया। मैं विधिक से बात कर रही थी, मैंने बोल दिया है उसे कि अब मैं नहीं डरती उससे, उसे जो चाहे करना हो वो। आंशी बोलते हुए रुक गई। उसने देखा अमन ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां बांध ली थीं। तुम बात कर रही थी या उसके गुस्से को और भड़काकर उसे सबको बर्बाद करने पर मजबूर कर रही थी? मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हें उसकी कमजोरी का पॉजिटिव तरीके से फायदा उठाना है, ना कि ये कि तुम उसकी कमजोरी हो तो उसे कुछ भी बकवास बोल दोगी। अमन गुस्से में काफी जोर से चिल्लाया था। आंशी ने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था। पहली बार उसे अमन से डर लग रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उसे ये बोल रही थी कि मैं नहीं डरती उससे। और वो, आंशी अपने किए की सफाई देने की कोशिश कर रही थी तभी अमन ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, और वो जो चाहे जो कर ले, तुमने उसे खुली छूट दे दी कि वो तुम्हारे आसपास के लोगों को कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है। आर यू मैड आंशी, तुमने अपने गुस्से में अपने आखिरी शब्दों पर गौर नहीं किया होगा, सोचो तुमने उससे क्या कहा था।
ये सच भी था, आंशी ने गुस्से में विधिक को क्या कहा था उसका होश उसे खुश नहीं था। वो याद करते हुए बोली, आई कर्स यू विधिक, तुम्हारी जिंदगी में सब मिल जाएगा, लेकिन तुम अपनी सबसे कीमती चीज के लिए आखिरी दम तक तड़पते रहोगे। तुम्हारी आखिरी सांस तक मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और तुम, आंशी ने टूटे फूटे शब्दों में अपनी बात को दोहराया जो उसने कुछ आखिरी लाइन विधिक को बोली थी। अपनी गलती का एहसास होने पर आंशी ने अपना सिर पकड़ और जमीन पर बैठ गई। मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गुस्से में वो कुछ करेगा तो नहीं ना, आंशी ने अमन की तरफ देखकर लाचारी से कहा। मुझसे बेहतर तुम उसे जानती हो, तुम खुद सोच लो कि वो कुछ करेगा या नहीं, अमन ने सार्कास्टिक वे में सिर हिलाकर कहा और फिर बाहर चला गया। अमन इस वक्त काफी गुस्से में था और आंशी को कुछ भी कहकर उसे हर्ट नहीं करना चाहता। किचन में आते ही उसने अपना हाथ दीवार से 2 से 3 बार पंच किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों का उस पर ऐसा असर होगा। ये लड़की किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से समझना ही नहीं चाहती। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, पर इसने अपनी बेवकूफी में जो किया है वो हम सब पर भारी पड़ने वाला है, अमन ने खुद से कहा। उसने तुरंत अपना मोबाइल ऑन किया और अपनी टीम को फोन पर कनेक्ट किया। लिसन, विधिक कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, खुद की और अपने आसपास से जुड़े हर लोगों की सिक्योरिटी टाइट कर लो, सभी पब्लिक प्लेस की सिक्योरिटी बढ़ा दो, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, अमन ने अपनी तरफ से ऑर्डर पास करते हुए कहा। अमन की आवाज से उसकी परेशानी साफ छलक रही थी। उसके ऑर्डर देते ही टीम अपने काम पर लग गई। वहीं लावण्या ने उसे उसी वक्त पूछा, तुम परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या, और तुम इतना श्योर कैसे हो कि विधिक कुछ करने वाला है? मैं इतना श्योर इसलिए हूँ लवी, क्योंकि भूखे शेर से भी ज्यादा खतरनाक एक घायल शेर होता है, और इस वक्त विधिक बहुत ज्यादा गुस्से में है। जहाँ तक मुझे पता है, वो आंची से जुड़े हुए लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सब टाइट सिक्योरिटी में है, तो बचा मैं और मेरी जॉब। वो हमें चैलेंज करने की कोशिश करेगा। हमें चैलेंज करने के चक्कर में यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या कुछ कर सकता है। मैं आंची को अकेले नहीं छोड़ सकता, वरना वहाँ आ जाता, अमन ने जवाब दिया। ठीक है, डोंट वरी, तुम्हारा ऑर्डर फॉलो करते हुए हम सब देख लेंगे, लेकिन कोशिश करना कि तुम विधिक के गुस्से को कम कर सको। हो सके तो प्लीज आंची का सहारा लेना, लावण्या ने जवाब दिया। उसने अमन को अपनी तरफ से तसल्ली दी और कॉल कट कर दिया। अमन की पूरी टीम एक्शन में आ गई थी। वहीं अमन गुस्से में था। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, विधिक के गुस्से को शांत करने के लिए अब आंची भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने ही उसे भड़काया है। आई विश कि वो कुछ ऐसा ना करे जिसकी वजह से आंची को प्रॉब्लम हो, और ना ही इस शहर को। अमन ने कुछ देर सोचा और अपना मोबाइल हाथ में लिया। विधिक से मीटिंग के बाद उसके पास उसके प्राइवेट नंबर थे। अब अमन वो करने जा रहा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपनी तरफ से खुद विधिक को रोकने के लिए उससे मिलने के लिए कॉल करने जा रहा था।